सूरत नूर आयत नंबर 35, इसको फिर एक दफा मुख्तसिर सा इस पे से गुजरते हुए आगे चलते हैं ताकि बात जो है वो अच्छी तरह वाजे हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं, अल्लाह नूर समावाती वल अर्द, और इसके नूर के दो मानी हैं, एक है मुनव्वर करने वाला और दूसरे इसके मानी हैं हादी, हदायत देने वाला। तो नूर मस्दर है बमानी मुनव्वर, आयमाए तफसीर इस पर मुत्तफिक हैं, जमहूर मुफस्सरीन की ये राय है कि यहाँ इससे मुराद जो है वो ये है कि अल्लाह जो है वो मुनव्वर है और वो अपनी जो जात है उसमें भी रोशन है और वो कायनात को जो है वो रोशन करने वाला है। तो मुनव्वर रोशन करने वाले के हैं, और सीगा मुबालगा की वजह से यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि अल्लाह सबको नूर बख्शने वाला है, सबको नूर बख्शने वाला है, आसमानों के अंदर जो कुछ है, जमीन के अंदर जो मखलूक है, उन सबको नूर जो है वो बख्शने वाला है। तो मानी क्या है कि रोशनी और रोशन करने वाली चीज, और नूर अल्लाह के नामों में से एक नाम भी है। और वैसे रोशनी की नूर की तीन किस्में हैं, और एक किस्म जो है वो क्या है कि रोशन चीजों का नूर, जैसे सूरज चांद सितारे वगैरह, या फिर ये ट्यूबलाइट वगैरह। दूसरा आंख का नूर, तो अगर कोई शख्स जो है वो आंख से देख सकता हो तो ही वो सूरज की रोशनी से फायदा उठा सकता है। तो आंख का नूर जो है वो दूसरी किस्म है रोशनी की। और तीसरी रोशनी कौन सी है, जो के वही या इल्मे दीन का नूर, जिसे हदायत का नूर भी कहते हैं। तो इसके मानी ये हैं कि अगर किसी के दिल में जो है वो बसीरत ना हो तो फिर वो जो आयात है, जो हदायत का सरचश्मा कुरान है, जो नबी की जिंदगी है, जो नबी का उस्वा है, उससे लोग फायदा नहीं उठा सकते। तो इसके असल मानी जो यहाँ पर बयान किए गए हैं वो ये हैं कि इस मिसाल में अल्लाह ताला ने, बाज मुफस्सरीन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये बात बताई है कि अल्लाह ताला की जात जो है उसको अल्लाह ने चिराग से मिसाल दी है, और ताक से मुराद कायनात है, और फानूस से मुराद जो है वो पर्दा है जो अल्लाह ताला ने अपने आप को दुनिया की नजरों से जो है छुपा रखा है। एक मानी ये भी है, और ये जो पर्दा है ये छुपाने का नहीं है बल्कि शिद्दत जहूर का पर्दा है कि इंसान जो है आजीज है कि वो अल्लाह को देख सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुतालबा किया था ना, लेकिन अल्लाह ताला को देख ना सके। क्यों? अल्लाह ताला ने जब अपना जलवा पहाड़ पर कोहे तूर पर किया तो वो भी जो था टुकड़े टुकड़े हो गया। तो असल वजह क्या है कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये है कि अल्लाह ताला की जात जो है वो ही हर तरह के नूर का, हर तरह की जो रोशनी है उसका जो है वो मंबा है। और हमारा जो वजूद है या हमारे जो जिस्म के अज़ा हैं या हमारी आंखें हैं वो आजीज हैं इस बात से कि वो उसका इतराक कर सकें या वो उसको जो है वो पा सकें। तो असल बात क्या है, अल्लाहु नूरुस समावाती वल अर्द, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जो है वो आसमान का भी नूर है और जमीन का भी नूर है, गोया के पूरी कायनात का नूर है। पूरी कायनात कैसे है और अल्लाह के नूर की मिसाल कैसी है, मसल व नूर ही, उसके नूर की मिसाल जो है वो ऐसे है। तो अब यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने जो अपने नूर की मिसाल बयान की है उसकी शक्ल क्या है कि उसके नूर की मिसाल ऐसी है, कमिश्कातिन, गोया के एक ताक है। तो गोया के पूरी कायनात जो है ना वो एक ताक है। कायनात क्या है, पूरी दुनिया क्या है, पूरी दुनिया जो है, पूरी कायनात एक ताक की मानिद है। फीहा मिसबाह, और ताक जो है ना इसके अंदर चिराग रखा हुआ है, मिसबाह चिराग को कहते हैं। तो पूरी कायनात जो एक ताक की तरह है, इसमें चिराग रखा हुआ है, और वो जो चिराग है वो रोशन है। जैसे अल मिसबाह भी कह दिया जाए ना, आगे कुछ भी ना कहा जाए, तो इसका मतलब है कि ऐसा चिराग जो कि रोशन है ना, रोशनी खुद रोशन है, रोशनी दे रहा है। तो यहाँ पे फिर मानी क्या है कि जिस चिराग की रोशनी की मिसाल दी गई है ना, दरअसल वो अल्लाह का नूर है। तो बाज लोग ये कहते हैं कि पूरी कायनात जो है ये ताक है, और ताक के अंदर जो है ये अल्लाह का नूर बिखरा हुआ है तमाम चीजों के अंदर, ठीक है। बाज लोग ये क्या कहते हैं कि ताक से मुराद, क्योंकि पूरी दुनिया एक दुनिया है और इंसान भी एक दुनिया है, इंसान भी एक कायनात है, एक दुनिया है। कायनात आलम अकबर है, तो कायनात इंसान क्या है, आलम असगर है। आलम अकबर दुनिया है, कायनात है, तो इंसान क्या है, आलम असगर है। तो इंसान जो है ना, इसका जो सीना है, मोमिन का जो सीना है, वो ताक है दरअसल यहाँ पे, ठीक है। समझ आ गई बात की आपको, बात एक ही है, बात कहने का अंदाज है। तो गोया के अल्लाह ताला कह रहे हैं कि चिराग जो एक ताक में है, वो जो रोशनी है, वो रोशनी जो के दुनिया में बिखरी पड़ी है, या वो जो मोमिन के सीने के अंदर रोशनी है, तो रोशनी का जो फैलाव का दायरा है ना, वो वसी नहीं है। क्यों वसी नहीं है, इसलिए कि ताक में रखा हुआ है। क्योंकि अगर ताक में रखी हुई चीज है उसको महदूद कर दिया जाता है, तो इसलिए महदूद किया जा रहा है ताकि वो चीजें वाजे नजर आए, चीजें जो है वो नुमाया तौर पर नजर आए, है ना। तो गोया के यानी आप यूं समझें कि ताक के अंदर जो चिराग है, तो पूरी दुनिया में अल्लाह के नूर की रोशनी ऐसे ही है जैसे कि ताक के चिराग की, पूरी दुनिया में चीजें जो है वो वाजे नजर आ रही हैं, नुमाया नजर आ रही हैं अल्लाह की रोशनी की। और फिर आगे जो है वो जो रोशन चिराग है, उस चिराग रोशन की मिसाल दी गई है। और कैसे मिसाल दी गई कि अल मिसबाह जो था, जो कि मिशकात के अंदर है, ताक के अंदर। और मिसबाह किस चीज का बना हुआ है, उसके अंदर क्या है, मिशकात जो है, मिसबाह जो है फी जुजाजा, वो जिस भी चीज का बना हुआ है, लेकिन वो है शीशे के अंदर, फानूस। किसी ने इसका तर्जमा फानूस किया, किसी ने जुजाजा का तर्जमा कंदील किया। तो फानूस किसे कहते हैं, शीशे को, ऐसा शीशा जो कि जिसके आर पार देखा जाए। तो वो जो है वो क्या है कि वो फानूस का, उसके इर्द गिर्द फानूस है, अजुजाजा तू, और वो फानूस का बताया गया। अब मजीद फानूस की वजाहत वो कैसा है, गोया के कौ कबून दुरीयुन, ऐसा सितारा जो बहुत बड़ा है और बड़ा चमकदार है। वैसे तो मिसबाह भी ऐसी रोशनी जो सुबह की रोशनी जो होती है सफेदी मायल होती है, लेकिन अब जो शीशा है वो शीशा भी ऐसा जैसे कौ कबून दुरीयुन, बहुत ज्यादा चमकने वाला है, चमक दमक रखता है। तो चिराग का शीशा बड़ा चमकता हुआ है, जो उसके अंदर तेल जलाया जा रहा है, आम दरख्त का तेल नहीं है कि सरसों का ले लें, राई का, किसी का भी, बल्कि वो जैतून का दरख्त, और दरख्त भी आम नहीं। अल्लाह ने कुरान में इस दरख्त को शजरत मुबारक कहा, मुबारक दरख्त है, बड़ा खैर और फजल की अफजाइश वाला, बड़ा बड़ा खास। यहाँ पे भी ज्यादती के मानी मुबारक के अंदर पाए जाते हैं, और बढ़ने ही बढ़ने वाला, और जैतून का दरख्त, और तेलों में से जैतून का तेल सबसे अच्छा तेल है। और अब आप देखें कि जैतून के तेल की सिफात, पहली सिफत मुबारक, दूसरी सिफत ला शर्कियत वला गर्बिया, तीसरी सिफत यकादु ज़ैतुहा युदीउ वलौ लम तमससु नार। तो पहली सिफत क्या है कि जैतून का तेल कितना अच्छा है। आप सोचें कि दरख्त मुबारक है, और वो दरख्त भी ऐसा जो कि जैतून का, जो ना शर्की है ना गर्बी है, और जो वो दरख्त जो कि बाग के वस्त में दरमियान में होता है, वो ज्यादा समर आवर होता है, ज्यादा फल देता है, शादाब होता है, अच्छा फल देता है। वो दरख्त जो के बाग के किनारों में होते हैं, चढ़ता सूरज उसको रोशनी देता है या डूबता हुआ सूरज? आप देखें, आपके घर के आप में से बाज लोगों को बागबानी का शौक होगा, या आप बाज अवकात किसी चीज को सुखाना चाहती हैं और आपका घर किसी ऐसी जगह पर है जहां सूरज हर वक्त रोशनी नहीं देता, डूबता हुआ सूरज या चढ़ता हुआ सूरज, थोड़ी सी रोशनी आती है फिर सारा दिन आपको रोशनी नहीं मिलती, है ना? तो आबोहवा के लिहाज से वो दरख्त या वो घर जो ऐसी जगह पे है जहाँ हर वक्त वो रोशनी में होते हैं, वो ज्यादा अच्छे अच्छा होते हैं सेहत के लिए। बीमारियां, जरासीम खत्म हो जाते हैं, हवा अच्छी होती है, सेहत अच्छी हर लिहाज से। तो बहरहाल यहाँ पे भी वो दरख्त ऐसा है, शरफती गड़बी नहीं है, डूबता सूरज या चढ़ता सूरज रोशनी नहीं देता, बल्कि वस्त बाग के वस्त में है, हर वक्त वो सूरज की रोशनी ले रहा है। और चूंकि जैतून का पूरा दरख्त फायदा ही फायदा है, उसका फल भी, उसके तने भी, उसके पत्ते भी, और उसका दरख्त से को अगर निचोड़ा जाए ना, तो फल जो है ना उसका तेल देता है, जरूरी नहीं उसको किसी मशीनों के अंदर डाला जाए। यकादु ज़ैतुहा करीब है के युदियु के वो रोशनी दे, वलौलम तमससु नार, गोया कि उसको आग भी ना लगाएं, आप दिया सलाई ना दिखाएं, आप उसको रोशनी भी ना दिखाएं, इतना अच्छा तेल है जैसे खुद ब खुद आग लेने के, आग से भड़कने के लिए तैयार है, जैसे कि पेट्रोल है ना, खुद ब खुद नूरुन अला नूर। ये ऊपर जो मिसाल दी गई है ना, तो ये है नूरुन अला नूर, रोशनी पर रोशनी। के पहले ही मिश्कात के अंदर मिसबाह है, पहले ही वो नूर है, ऊपर से जुजाजा उसके पास है, जुजाजा में है, ऊपर से जुजाजा भी ऐसा कि कौकबुन दरियू है, और कौकबुन दरियू के बाद तेल ऐसा, ऐसे मुबारक दरख्त का जो कि ला शर्किया वाला गर्बिया, और खुद ब खुद जलने के लिए तैयार, नूरुन अला नूर। ये हैं इसके मानी के अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दरख्त बहुत ही अच्छा है और तेल बड़ा साफ और शफाफ है कि आग के छुए के बगैर ही लगता है कि भड़क उठेगा। और नूरुन अला नूर इसमें मानी क्या है कि ईमान की रोशनी, हदायत की रोशनी। इस पूरी मिसाल से अल्लाह ताला क्या समझाना चाहते हैं कि पूरी कायनात में अल्लाह की रोशनी तो बिखरी हुई है और मोमिन के दिल के अंदर भी रोशनी होती है, और हर शख्स जब पैदा होता है तो पैदाइशी तौर पर वो मुसलमान ही होता है ना, है ना? और बाज लोग सलीम फितरत वाले होते हैं, कल्ब सलीम लेकर आते हैं, फितरत सलीम। और अच्छा थोड़ा सा माहौल मिल जाए, थोड़ी सी अच्छी सोहबत मिल जाए, थोड़ा सा भी पढ़ ले तो चमकने लगते हैं, फौरन बेचैन होते हैं नेकियां करने के लिए, नेकियां फैलाने के लिए। तो ये मिसाल अल्लाह ताला दी है कि ईमान की रोशनी उन लोगों को नसीब होती है जिनकी फितरत सवाले होती है। तो ईमान की रोशनी उन सीनों को नशेमन बनाती है, उन सीनों को चिराग बना देती है, घोंसला बनाती है, जिनकी फितरत में कोई फसाद और बिगाड़ नहीं होता। आप देखें, बाज बच्चे ऐसे होते हैं, आप बात करें तो क्या क्यों कैसे, बाज स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आप बात करें क्या क्यों कैसे में उलझे रहते हैं, और बाज ऐसे होते हैं कि फौरन समझकर अमल के लिए तैयार होते हैं ना। और मतलब यह है कि दावत ईमान की जरा सी रगड़ से ये चिराग भड़क उठता है, फितरत के नूर के ऊपर ईमान का नूर। इसका मतलब है कि क्या मतलब है कि पहले ही मोमिन के सीने के अंदर जो फितरी नूर था, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल था कल्बे मुनीब सल्बे मुन कल्बे सलीम, है ना, और अवाहुम मुनीब, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल था ना कल्बे मुनीब और कल्बे सलीम। अब आप देखें कि सूरज देखा, चांद देखा, सितारा देखा, फिर अल्लाह ताला तक पहुंच गए ना, फितरी नूर से उन्होंने ईमान के नूर को पाया। तो ये है कि फितरत का नूर, ये है एक रोशनी। दूसरा, इर्द गिर्द कायनात में बिखरी हुई अल्लाह की निशानियां, फिर कुरान मजीद, फिर अल्लाह के नबी की जिंदगी, तो ये है दूसरा नूर, है ना। और तीसरी बात ये है कि वो है ही नफ्से मुतमईना, कल्बुन सलीम है, नूरुन अला नूर बन जाता है। ये है बात, नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है। इसका मतलब ये है कि जिसके दिल में नूरे बसीरत का अतिया मौजूद होता है वो अल्लाह के अहकाम वही इलाही को कबूल करने के लिए इतना बेताब होता है जैसा कि पेट्रोल आग को लेने के लिए है ना, जैसे कि पेट्रोल आग को लेने के लिए। तो अल्लाह ताला ने भी नूरे बसीरत जो है वो अता किया है। और अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून क्या है कि जो शख्स कुव्वत से काम लेना छोड़ देता है तो कुव्वत उसे छीन ली जाती है। मेरी अम्मी कहा करती थी, पंजाबी में कहते हैं हड पैर, जिस्म के अजा, कहती नहीं ये हाथ पांव जो है इनसे जितना काम लोगे ना उतना फायदा देंगे, उतनी देर चलेंगे। और जब आप इन हाथ पांव से काम लेना छोड़ देते हैं ना, ये भी आपका साथ देना छोड़ देते हैं। और बाज लोग आखिरी जिंदगी तक काम करते रहते हैं, आखिरी जिंदगी तक उनके जिस्म के अजा उनका जो है ना वो साथ देते हैं। जो जितनी जल्दी आराम तलब होता है और काम करना छोड़ देता है, उनके जिस्म के अजा भी उनका साथ देना जो है वो छोड़ देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो अल्लाह की हदायत को लेने की कोशिश नहीं करते ना, अल्लाह ताला भी उनको हदायत का नूर जो है वो नहीं देता। وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ और वो लोगों को मिसालों से बात समझाता है। अल्लाह ताला का कुरान में बड़ा ही खूबसूरत अंदाज है कि अल्लाह ताला कुरान में बहुत सी मिसालें देते हैं और मिसालों के जरिए से बात क्या समझाते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो हदायत को लेने में जो हैं वो कामयाब हो जाए, किस तरह से लोग जो हैं वो हदायत जो है उसको हासिल कर लें। फिर आप देखिए साथ ही अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु बिकुल्लि शयइन अलीम और वो हर चीज से खूब वाकिफ है। अल्लाह ताला को खूब पता है कि इल्म और हिकमत के मोती, उसका कुरान जो है उसकी हदायत का जो नूर है वो किस सीने में जाना चाहिए। जाहिर और बातिन से अल्लाह ताला खूब वाकिफ हैं और इसके मुताबिक वो अपनी हदायत का नूर जो है वो अता करते हैं। आयत के शुरू में तो कहा कि ये नूर आम है ना, आसमान में है और जमीन में है, गोया के अल्लाह ताला के नूर, अल्लाह के नूर जो है आसमान और जमीन, मोमिन काफिर सबके लिए आम है। आप देखें अल्लाह की निशानियां सबके लिए आम है, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो हदायत देता है अपने नूर की तरफ जिसको वो चाहता है। इसका मतलब है कि मशीयत इलाही के मुताबिक जो इंसान खुद नूरे कुरान को, नूरे हदायत को लेना चाहता है वो खुश नसीब होता है और अल्लाह भी उसको हदायत का नूर जो है वो अता कर देता है। जो लेना नहीं चाहता अल्लाह ताला भी उसको जो है वो फिर देना नहीं चाहता। फिर फरमाया फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु, अब उसके नूर की तरफ जो हदायत पाते हैं लोग वो आपको मिलेंगे कहाँ पे। अब आप देखें कि हर शख्स ये कह सकता है कि मेरे पास अल्लाह का नूर है ना। तो अल्लाह ताला जिनके पास अल्लाह का नूर है या जिनके पास हदायत का नूर है, जो नफ्से मुतमईना है, जो कल्बे सलीम रखने वाले हैं, अब अल्लाह उनकी निशानी बता रहा है कि जिनको ये हदायत का नूर मिला हुआ है वो आपको मिलेंगे कहाँ। फी बयूत, इन घरों में, बैत की जमा बयूत है, ये घरों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि वो घरों में मिलते हैं। अज़िन अल्लाहु, अल्लाह ने इज्न दिया है, अन तुरफा के बुलंद किया जाए, यानी उन घरों को बुलंद किया जाए, रफा यानी बुलंदी के मानी में है कि बुलंद किया जाए, व युज़करा फीहा और उनमें जिक्र किया जाए, फीहा उस घर में, घरों में, इस्महु उसके नाम का, उन घरों में उसका नाम लिया जाए, युसब्बिहु लहु फीहा बिलगुदुव वल आसाल, वो ऐसे लोग हैं कि सुबह शाम उसकी तस्बीह करते हैं, सुबह शाम, ना सुबह देखते हैं ना शाम, यानी गोया के हर वक्त उसकी जो है वो तस्बीह करते हैं। तो फी बुयूतिन, इसके क्या मानी है, मुफस्सरीन की एक राय तो ये है के बैत की जमा बुयूत है, और बुयूत जो है जमहूर मुफस्सरीन ने यहाँ पे मसाजिद के मानी में लिया है कि यहाँ पे बुयूत से मुराद मसाजिद है। अब ये है कि ये लोग जो है ये मसाजिद में नजर आते हैं। आप देखें मोमिन मोमिन का जो जिस्म है ना, जिस्म के सारे ही अज़ा हैं, लेकिन मोमिन का के जिस्म में सीना और सीने में दिल, इसको एक खास अहमियत हासिल है। इसी तरह पूरी दुनिया ही आबाद है ना, एक बस्ती है, एक शहर है, गांव है, पूरी ही आबादी है, लेकिन पूरी आबादी के घरों में जो हैसियत मस्जिद को हासिल है बाकी घरों को हासिल नहीं है। मोमिन के जिस्म के अज़ा को भी, अज़ा में भी जो हैसियत मोमिन के सीने और दिल को हासिल है, जहां पे नूरे ईमान होता है, नूरे हदायत होता है, जो नफ्से मुतमईना होता है, बाकी अज़ा को वो हैसियत हासिल नहीं है। दिल में जब अल्लाह की याद समाई हुई होती है ना, पूरे जिस्म के अज़ा को एक वजद होता है, रुआ रुआ अल्लाह अल्लाह पुकार रहा होता है। बाहर लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, दिल के अंदर आपके इश्क इलाही जब बसा हुआ है तो लोग आपको दीवाना समझने लग जाते हैं। आपको ना अंदर का पता चलता है, ना बाहर का पता चलता है, ना रात का पता चलता है, ना सुबह का पता चलता है, ना सुबह का पता चलता है, ना शाम का। तो क्या है, फी बुयूतिन, वो मस्जिदों में पाए जाते हैं। अच्छा, बाज लोग कहते हैं कि इससे मुराद मस्जिदें हैं बुयूत से, और बाज लोग कहते हैं कि बुयूत से मुराद मोमिनों के घर हैं, उनका घर ही जो है वो मस्जिद बन जाती है। अब जो है जैसे हजरत आयशा रजी अल्लाह ना कहती हैं, जब से मुझे होश आया मैंने अपने वालदेन को मुसलमान ही पाया, और हम पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जिस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ ना आए हों। सुबह शाम आप दो वक्त तशरीफ लाते। फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के जी में आया तो उन्होंने अपने सहन में एक मस्जिद बनाई, वहां नमाज अदा करते और कुरान पढ़ते। मुशरकों की औरतें खड़ी होकर सुना करती, इनके बच्चे भी सुनते और ताज्जुब करते, और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को देखते रहते। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को देखते रहते। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु एक रोने वाले आदमी थे, तो अपनी आंखों से आंसू रोक ना पाते। ये सूरत हाल देखकर मुशरकीन, कुरैश के मुशरकीन सटपटा गए। ये बुखारी की रवायत है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने घर में मस्जिद क्यों बनाई? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, अभी मक्की दौर में मसाजिद कहाँ थी, और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और सहाबा हरम में जाते तिलावत करते या बाहर तिलावत करते, तो अहले मक्का ने शिकायत लगाई। उन्होंने कहा कि अपने लोगों को रोको कि जब ये कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, तो हमारे लोग जो है ना वो अपने आप में नहीं रहते, वो अपना दीन मजहब अपना सब कुछ भूल जाते हैं, रास्ते में रुक जाते हैं और सुनने लगते हैं। कहा कि इसको बंद कर दो अपने घर में। अब आप देखें कि आशिक जो है उसका इश्क, और वो इश्क हकीकी हो। अब दुनिया में तो इश्क मजाजी भी जो है वो उसको ही जो है वो कहीं ठहराव नहीं है आप देखें, लेकिन इश्क हकीकी के तो क्या कहने, वो तो दुनिया का इश्क तो झूठा इश्क होता है ना, जो मजाजी इश्क है, कभी हुसन पर होता है, कभी दौलत पर नजर होती है, सच्चा इश्क कहाँ होता है। तो जो इश्क हकीकी है, अब आप देखें अल्लाह से इश्क था ना, अब घर के अंदर ही एक घर का हिस्सा जो है वो मुख्तस कर दिया, मखसूस कर लिया, अब वहां पे बैठकर तिलावत नमाज, गोया कि उसको मस्जिद बना दिया। अब जब तिलावत करते तो इतनी खूबसूरत तिलावत, इतनी अच्छी तिलावत, रास्ते में गुजरने वाले उनके घर के पास आकर खड़े हो जाते और उसकी जो है वो उनकी तिलावत सुनते, और वो रोते थे और उनकी उनका रोना जो था वो उनसे देखा नहीं जाता था। और यहां तक कि अहले मक्का इसमें भी सटपट आ गए कि अब यहां पे भी इनको रोका जाए। तो असल में बाज लोग कहते हैं ये मोमिनों के घर, मुत्तकी लोगों के घर, अब कलमा पढ़ने वाले तो सारे ही हैं, सबके घर यहाँ पे मुराद नहीं है, उन मुत्तकी लोगों के घर जिन्होंने अपने घरों को मस्जिद बना दिया, घरों का चप्पा चप्पा मस्जिद है। तीसरे इसके मानी बयूत के लिए गए, वो खास जगहें जो तालीम कुरान के लिए वक्फ है, जो दीन की तालीम वाज और नसीहत जिक्र के लिए मखसूस हैं, जैसे मदारिस हैं, खानकाहें हैं, और बाज कोई भी अपनी जैसे बेसमेंट ही कोई दे देता है अल्लाह के रास्ते में, कोई जगह नहीं दी किसी के पास, अल्लाह का दीन का कोई काम करना चाहता, किसी ने कहा मेरा घर ले लो, मेरा लिविंग रूम ले लो, मेरा ये ड्राइंग रूम ले लो, मेरे घर की बेहतरीन जगह वो है जो अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल हो, आप इसको ले लीजिए। बाज लोग तो उसमें भी डरते हैं ना, मेरी वाइट वॉश खराब होगी, मेरा कारपेट खराब होगा, औरतें आएंगी तो साथ बच्चे भी आएंगे, और फिर ये कि वो चीजें खराब होंगी तो घर नहीं देना चाहते। घर वो ही जिसमें अल्लाह का जिक्र हो, चीज वो ही जो अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल हो जाए। तो बाज लोग कहते हैं कि वो घर मुराद है जहां पे खास अल्लाह की दीन की कुरान की तालीम दी जाती है। फी बयूतिन, तो ये लोग मिलते हैं मसाजिद में, या घर ही उनके मस्जिदें हैं, यानी मस्जिद में वक्त गुजारते हैं, वापस आते हैं तो घर भी मस्जिद की तरह है, वहां पे अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। और तीसरे मानी ये है कि वो घर जो के तालीम के लिए खास है। अजीन अल्लाह, अजीना जो है आप देखें कि अजीन इसके मानी क्या है, इजाजत देना। वैसे तो कान को कहते हैं, है ना, उजुन कान को कहते हैं, और अजीना जो है इसके मानी होते हैं इजाजत देना का, किसी को इजाजत दे दी जाए, यानी कान से उसने जो बात सुनी तो उसको इजाजत दे दी। मुफस्सरीन ये कहते हैं कि यहां पे इजाजत देने से मुराद हुक्म करना है। अब ये नहीं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह ने तो इजाजत दी, लेकिन वो अल्लाह की इजाजत को हुक्म के मानी में लेते हैं। जो कल्बे मुनीब होते हैं ना, या सलीमुल फितरत लोग होते हैं, बस उनको तो नेकी का इशारा चाहिए, उनको तो बस मौका चाहिए। अब वो जो लोग हैं और उनके पास हदायत का नूर है, जो पिछली आयत में आपने मिसाल पढ़ी, उनका हाल तो ऐसा है, फी बयूतिन अज़िनल्लाहु, वो उन घरों में हैं, वो मसाजिद में हैं, वो उन जगहों में हैं जहां पे अल्लाह ने इजाजत दी है, जहां पे गोया के अल्लाह ने हुक्म दिया है, यानी वो इजाजत को हुक्म के मानी में लेते हैं। अंतरफा, अल्लाह ने हुक्म क्या दिया, अल्लाह ने क्या इजाजत दी, अंतरफा, असल में तुरफा ऊ था, अन्य आयन पर दमा को फता में तब्दील कर दिया कि बुलंद किया जाए। मुफस्सरीन ने रफा के भी दो मानी बताए हैं। रफा के एक मानी तो हैं हिस्सी मानी, मानवी मानी, और दूसरे मानी हैं जो के आम मानी है, लुघवी मानी। लुघवी मानी रफा के होते हैं बुलंद करना, है ना, जैसे आप देखें कि वाइज यरफाउ इब्राहिम अल कवायदा मिन अल बैत, आप पढ़ चुकी ना, तो रफा कवायद से मुराद क्या है, बिनाए कवायद, यानी कवायद बुनियादों को कहते हैं, तो बुनियादों को बुलंद करना। खाना काबा की तामीर और उसकी दीवारें जब उठाई जा रही थी तो मुराद ये है कि मस्जिदों का बनाना। जमूर साहब और ताबईन ने रफाए बुयूत से मुराद क्या लिया, मस्जिदों का बनाना, यानी गोया के वो मस्जिदें बनाते चले जाते हैं, और वो मस्जिदों की जाहिरी शानो शौकत और तामीर बुलंद करना, उनको ऊंचा करना कि अल्लाह का घर सब घरों से अच्छा हो, प्यारा हो, खूबसूरत हो, दूर से नजर आए, वो ये मुराद लेते हैं। और जैसे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने मस्जिद नबवी की तामीर जो है वो उसके लिए शानदार लकड़ी का जो है वो इस्तेमाल किया था। फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद नबवी में जो है वो नक्शो निगार तामीर खूबसूरत, यानी तामीर में जो खूबसूरती थी उसका बहुत एहतमाम किया था, और किसी ने उस पर जो है वो तबसरा नहीं किया था, या किसी ने कहा नहीं था कि ये काम आपका सही नहीं है कि मस्जिदें नक्शो निगार और इतनी खूबसूरत बनाई जा रही हैं। फिर इसी तरह बाज बनु उमैया के जो बादशाह थे, या बाज लोग जो हैं वो मसाजिद की तामीर पर बहुत ज्यादा रकम खर्च करते हैं, है ना। वलीद बिन अब्दुल मलिक के बारे में आता है कि दमिश्क की जामिया मस्जिद जो आज भी मौजूद है, दमिश्क की जामिया मस्जिद, उसकी तामीर, उसकी आराइश और ज़ीबाइश पर पूरे मुल्क शाम की सालाना आमदनी से 3 गुना ज्यादा माल खर्च उसने किया था, और उसकी बनाई हुई मस्जिद आज भी मौजूद है। तो अगर मस्जिदें जो है वो नामों नाम के लिए, नुमाइश के लिए, शोहरत के लिए ना हो कि लोग कहेंगे वाह भी वाह क्या मस्जिद है, उसकी बजाय अल्लाह के नाम और अल्लाह के घर की ताजीम के लिए, अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए शानदार खूबसूरत मस्जिदें बनाई जाएं तो ये गलत नहीं है, इस पर भी अजर की उम्मीद है इंशाल्लाह। दूसरे मानी अंतरफा के क्या है, مفسرین یہ کہتے ہیں کہ رفع ان کے معنی بلند کرنا کے ہے، اور مراد ہے کہ تعظیم اور احترام کرنا. مسجدوں میں اللہ کا ذکر جو ہے نا اس کو بلند کرنا مراد ہے، کہ مسجدیں جو ہیں وہ ہر طرح کی نجاست سے پاک کی جائیں. یعنی بلند کرنے کا حکم کیا ہے کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر تو کیا جائے، اللہ کا نام تو بلند کیا جائے، لیکن لغو کام اور لغو کلام جو ہیں ان سے لوگوں کو منع کیا جائے. اب آپ دیکھیں، جیسے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رفع مساجد، یعنی رفع بیوت سے مراد رفع مساجد ہے، اور مساجد کی تعظیم اور احترام، اور ان کو نجاستوں اور گندی چیزوں سے پاک کرنا ہے. مثلا حدیث سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ جب کوئی نجاست مسجد میں لائی جاتی ہے تو مسجد اس سے اس طرح سمٹتی ہے جیسے انسان کی کھال آگ سے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسجد میں سے ناپاکی اور گندگی اور تکلیف کی چیز کو نکال دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حکم دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا کہ اپنے گھروں میں بھی مسجدیں، یعنی نماز پڑھنے کی جو مخصوص جگہ ہیں، وہ بنائیں اور ان کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں. تو یہ اس کے جو ہے وہ معنی ہیں. اچھا، پاک صاف رکھنے میں اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ کسی قسم کی جو ہے وہ بدبو وہاں پہ نہ ہو. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی شخص کے منہ میں لہسن اور پیاز کی بدبو محسوس کرتے تھے تو آپ اس کو مسجد سے نکال کر بقیع کے میدان میں بھیج دیتے تھے، اور فرماتے تھے جس کو لہسن پیاز کھانا ہی ہو تو اس کو خوب اچھی طرح پکا کر کھائیں کہ ان کی بدبو ماری جائے. اسی طرح یعنی اگر کسی کو کوئی ایسی بیماری ہے جس سے بدبو وغیرہ آ رہی ہے تو اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی تکلیف ہے کہ جس سے لوگوں کو بدبو آ رہی ہے، تو وہ مسجد میں جاتے ہوئے خیال رکھے تاکہ مسجد میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو باقیوں کو. اور آپ کو پتہ ہے کہ مسجدوں میں فرشتے بھی آتے ہیں نا، اور فرشتے جو ہے وہ ایسی جگہوں پر نہیں آتے جہاں پہ پھر بدبو ہے یا اس طرح کی چیز ہے. تو یہ اس کے معنی بھی مفسرین جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فی بیوتن، وہ مساجد میں پائے جاتے ہیں یا ان کے گھروں گھر ہی مسجد بن جاتے ہیں، یا وہ ایسی جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ وہ موجود ہوتے ہیں. اذن اللہ، وہ اجازت کو حکم کے معنی میں لیتے ہیں، ان ترفعہ، کے وہاں پہ جو ہے وہ بلند کیا جائے، مسجدوں کو بنایا جائے بلند کیا جائے، یا اللہ کا ذکر بلند کیا جائے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کے کام نہیں کرتے، وہ مسجدوں میں بیٹھ کر خرید اور فروخت کی باتیں نہیں کرتے، وہ اپنی گمشدہ چیزوں کا اعلان ہی نہیں کرتے رہتے، وہ مسجدوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ جھگڑے نہیں کرتے، وہ لڑائیاں نہیں کرتے، ہے نا، وہ اپنی انگلیاں ہی نہیں چٹکھاتے رہتے، ہے نا، نجاستوں کو لے کر مسجد میں نہیں جاتے، بلکہ جب وہ مسجدوں میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ یوز کرا فیہا، کہ وہ ذکر کرتے ہیں. وہ کس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فیہا اسمہو، فی اسمہو، کہ وہ اللہ کے نام کا مسجد کے اندر جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، یعنی اور ذکر کرتے ہیں فیہا اس میں، اسمہو اس کے نام کا. اب ذکر سے مراد ایک تو کیا مطلب ہے، اس کے بھی دو معنی ہیں. ذکر کے ایک معنی تو ہیں آقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، نماز ذکر ہے. اور دوسرا ذکر سے مراد کیا ہے، جتنے بھی ذکر اذکار ہیں. تو مسجد میں بیٹھ کر یا تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، زبانی ذکر یعنی لسانی ذکر جو ہوتا ہے، یا قلبی ذکر یعنی اللہ کو، اللہ کی آیات پر غور کر رہے ہیں، یا پھر وہ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ قرآن کی تعلیم دوسروں کو دے رہے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، یوز کرا فی ہسمہ، اور وہ ذکر کرتے ہیں اس میں اس کے نام کا، تو اللہ کو ہی وہ یاد کرتے ہیں. یسبح لہ، وہ تسبیح کرتے رہیں اس کی. تو یسبح جو ہے اس کے کیا معنی ہیں، تسبیح کرنا، سین با ہا کے لفظی معنی ہے کہ پانی میں تیزی سے گزر جانا، اور جس طرح پانی میں جب آپ تیزی سے گزرتے ہیں تیراکی کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ چیز نہیں ہوتی نا، تو تیزی سے گزرتے ہیں، تو اس طرح جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ذکر جو ہے نا اس میں کوئی بھی کمی بیشی جو ہے وہ کریں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اللہ کی جب وہ پاکی بیان کرتے ہیں تو اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے. تو تسبیح سے مراد بھی بعض مفسرین نے نماز لی ہے اور بعض نے تسبیح اور اذکار مراد لیے ہیں. تو مسجد کا اصل مقصد تو عبادت ہوتا ہے نا، اللہ کا ذکر کرنا ہوا ہے تو اللہ ہی کو پکارا جائے. اب اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کے بھی شرک کرنا چاہے، اگر مسجد میں بیٹھ کر ہی لڑائی جھگڑا کرے، اگر مسجد میں بیٹھ کر ہی جو ہے وہ دنیا داری کی باتیں کرے، خریدنا بیچنا، تو یہ وہ کام نہیں کرتے، یعنی ان کا دل باقی سب چیزوں سے جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. اور جو یہ اللہ کا یسبحو، یہ جو ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا عام ذکر کرتے ہیں، لہو فیہا، یہاں پہ مسجد میں بیٹھ کر جو اللہ کا وہ بیوت میں جو ذکر کرتے ہیں، کرتے کب ہے؟ بالغدو والآصال، صبح و شام. تو غدو جو ہے یہ صبح کا، صبح سویرے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے صبح کا وقت. اور آثار جو ہے اس کو کہ یہ شام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اثال کا لفظ، یعنی اثر سے مغرب تک کا جو حصہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک صبح ہے اور ایک شام ہے، تو صبح اور شام کہہ کے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ جب وہ ہوتے ہیں اپنے بیوت میں یا مساجد میں تو وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے، بعض لوگوں نے اس سے اثر اور مغرب کی نماز مراد لی ہے. من سلل دردینی دخل الجنہ، یہ امام مسلم کی روایت ہے کہ جس نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا. فجر اور عصر کی نماز کی خاص طور پر حفاظت، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ فجر میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، گہری نیند، میٹھی نیند، اسی طرح عصر کا وقت بڑی جلدی کا ہوتا ہے، لوگ آفس سے واپس آ رہے ہیں، کاموں کو سمیٹ رہے ہیں، وقت تھوڑا سا ہے دونوں نمازوں کا، تو قضا ہونے کا ڈر بھی ہوتا ہے اور انسان مصروف بھی ہوتا ہے. تو گویا کہ وہ نمازوں کو قضا نہیں کرتے. دوسرے اس کے معنی کیا ہیں کہ وہ صبح ہو یا شام، گویا کہ ہر وقت وہ اللہ کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، اور ہر چیز سے زیادہ ان کو اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی رضا ان کو ہر چیز سے زیادہ مطلوب ہوتی ہے. تو یہاں پر اس کے معنی یہ ہیں دراصل کہ آپ نے آیت نمبر 36 اور 35 پڑھی، 35 میں آپ نے مثال پڑھی ایمان کی تصویر اور ایمان والوں کی تمثیل آپ نے پڑھی، اور ایمان سے بات مساجد تک آئی، مساجد سے بات اہل ایمان کے لیے آئی، اور ایمان کے لوگوں، اہل ایمان والوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے نا، اور ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے، اب آپ ان کی حقیقی زندگی دیکھیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صبح و شام اللہ کے یہ بندے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اور گویا کہ ان کی پوری زندگی جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح کی زندگی ہوتی ہے. یا مسجدیں بنا رہے ہیں، یا مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، یا مسجدوں میں اللہ کا ذکر بلند کر رہے ہیں، یا مسجدوں کو پاک اور صاف کر رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، صفے بچھا رہے ہیں، گھروں کے اندر بھی، گویا کہ پوری زندگی عبادت کی زندگی ہے، اس کا یہ مطلب ہے. صبح و شام سے مراد ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ وہ اللہ کی بندگی میں مصروف رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ مزید ان کی تعریف کرتے ہیں، مزید ان کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں کہ یہ میرے بندے ایسے بندے ہیں، رجال ان رجال. اب آپ دیکھیں کہ رجال جو ہے رجل کی جمع ہے، اور کسے کہتے ہیں؟ مرد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ رجال ہیں، اور رجال کیسے ہیں؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کو غافل نہیں کرتی. لا تلہیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ بھولتے نہیں ہیں لہو. وہ لہو میں، کھیل کود میں، وہ عام زندگی میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب جو بھی ان کا کاروبار ہوتا ہے تو یہ اس میں جو ہیں یہ غافل نہیں ہوتے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کیا ہے کہ رجالن ایسے لوگ ہیں، لا تلہیہم، انہیں غافل نہیں کرتی، لام ہا واو سے غافل نہیں کرتی، تجارتن، تجارت، ولا بیع ان، اور نہ ہی خرید و فروخت. اور آپ دیکھیں کہ تجارت کسے کہتے ہیں، کہ آپ چیزوں کو بیچ رہے ہیں، آپ چیزوں کو خرید رہے ہیں، ہے نا؟ تو تجارت، بعض لوگوں کا بزنس ہی تجارت ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ مکہ سے جو ہجرت کر کے مہاجر گئے تھے صحابہ، زیادہ تر کا کاروبار جو تھا وہ تجارتی تھا، کہ ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ لوگ جو تھے وہ تجارت کرتے تھے، ہے نا؟ اور اب آپ دیکھیں کہ جب تجارت لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کر لیا تو بیع کا لفظ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بیع جو ہے یہ بھی خرید و فروخت کو کہتے ہیں نا، تو بیع کا لفظ خرید و فروخت کے لیے آتا ہے، ذوی الاسداد میں سے ہے، اور معنی اس کے یہ ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں جب وہ لین دین کرتے ہیں، سودا بازی کرتے ہیں. یعنی ایک تو ہے نا کہ کسی کا پیشہ تجارت ہے، جب آپ تجارت کر رہے ہوتے ہیں تجارت کے دوران آپ آرام بھی کرتے ہوتے ہیں، ہے نا؟ لیکن بیعن جو آیا تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ عین خریدنے کا وقت یا بیچنے کا وقت. اب آپ دیکھیں کہ جو تجارت کرنے والا جو تاجر ہے، وہ جب تجارت کرتا ہے جو سودا بازی کا وقت ہوتا ہے نا، وہ اس کا بڑا اہم وقت ہوتا ہے نا؟ سودا بازی کے وقت جو ہے اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا. اس وقت وہ یہ چاہتا ہے کہ اب یہ گاہک کسی طرح چھوٹنے نہ پائے، اب یہ گاہک کسی طرح چلے نہ جائے. بھلے سے وہ کہتا ہے، اچھا کبھی تو کہتا ہے کہ آج تو تو پہلا بندہ ہے جو آیا میرے پاس، بونی کرنی ہے نا، ابتدا کرنی ہے میں نے اپنے بیچنے کی. کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا چلو $10 کم ہی دے دو. کبھی یہ کہتا ہے اس طرح کی چیز تمہیں کہیں نہیں ملے گی. کبھی کہتا ہے اچھا لے جاؤ، پسند نہیں آئے گا پھر دے دینا، میں واپس جو کرنے کو تیار ہوں، بس تم لے تو جاؤ نا. اور بعض کا جو بندہ ایک دفعہ لے کے چلا جاتا ہے پھر چیز پسند نہ بھی آئے، کہتا ہے آپ کہاں اس کو واپس لے کے جاؤ، اتنی زیادہ ضرورت ہے، چلو میری یہ پوری نہیں آئی، میرے پسند کی نہیں ہے، اس کو میں بس لے ہی لیتا ہوں نا. تو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کا انداز یہاں پہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بازار والوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور ان کے بیٹے حضرت سالم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بازار سے گزرے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا، لوگوں کو دیکھا دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو فرمایا انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کا یہ ارشاد ہے، رجالن لا تلہیہم تجارتن ولا بیعن عن ذکر اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. اسی طرح کہتے ہیں کہ عہد رسالت میں دو صحابی تھے، اور ایک تجارت کرتے تھے، دوسرے جو تھے وہ صنت و حرفت، یہ جو سکلز ہوتی ہیں نا، جیسے لوہار ہے، لوہاری کا کام کرنا، یا کوئی جوتے بنانا، یا کوئی بھی کام. تو جو تاجر تھے نا وہ کیا کرتے تھے، ان کا حال یہ تھا کہ سودا تولنے کے وقت اذان کی آواز جب کان میں پڑ جاتی، وہیں ترازو کو پٹک کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. بے شک ترازو کے اندر سامان پڑا ہوا ہوتا تھا، ابھی چیز پڑی ہوئی تھی، گاہک کھڑا ہے، بس اس کو پلٹ کر چلے جاتے تھے. دوسرے بزرگ کا حال یہ تھا کہ اگر گرم لوہے پر ہتھوڑے کی ضربے لگا رہے ہیں، کان میں اذان کی آواز آ گئی، تو اگر ہتھوڑا مونڈے پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور اب ہتھوڑا اٹھاتے ہیں آپ دیکھیں تو یوں کر کے زور سے، اب اٹھائے ہوئے یوں کر کے جب ضرب مارنے کے لیے آپ نے کندھے سے اوپر یوں اٹھایا ہوا ہے، اس کو آگے نہیں لاتے تھے، اذان کی آواز شروع ہوئی تو کندھے سے اس کو پیچھے پھینک دیتے تھے. وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اذان کی آواز آ گئی ہے، ہتھوڑا مونڈے پر اٹھایا ہوا ہے، اس کو بس اس ضرب کو تو لگا دیں، وہی مونڈے کے پیچھے ہتھوڑا ڈال کر نماز کو چل پڑتے تھے، اور اٹھائے ہوئے ہتھوڑے کی ضرب سے کام لینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. उनकी तारीफ में ये आयत नाजिल हुई और जो है वो सहाबा के बारे में क्या आता है कि ज्यादातर या तो तिजारत करते थे या सनत पेशा, तो जो तिजारत लोग करते हैं तो उनका काम क्या होता है, या बेच रहे होते हैं या खरीद रहे होते हैं। और आप देखेंगे ताजिर पेशा लोग होते हैं ना, जो घरों में बाज़ुकात खुशियां हैं गम हैं, उनके अपने ही मसाइल हैं उसमें उलझे हुए, उनके पास कोई फुर्सत नहीं होती। वो कहते हैं, जैसे मैं एक आदमी को जानती हूँ हमारे रिश्तेदारों में, तो वो कहते थे कि मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो आगे से उनकी बेटी ये कहती थी कि जब मरने का वक्त होगा ना फिर आपसे कोई नहीं पूछेगा, मरने का वक्त होगा फिर आपकी तो जान निकालने वाला फरिश्ता आएगा और निकाल के ले जाएगा, तो आप दूसरी चीजों पर भी तवज्जो दिया करें ना। तो बाज लोगों को जो ताजिर पेशा होते हैं उनको अपने काम से इतना काम होता है कि उनको फिर किसी और चीज की जो है वो होश भी नहीं होती। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि हदायत याफ्ता लोग, वो लोग जिनका जिनका सीना जो है जिसमें नूर है, जो कि चमकता हुआ चराग है, जो कि कौकबुन दुरीयुन है, जो कि मुबारक दरख्त का तेल है, यानी फितरी नूर है ईमान का जिनके सीने में, जो नूरुन अला नूर है, उनका हाल तो ऐसा है कि वो घरों के अंदर भी अल्लाह की याद में होते हैं, मसाजिद के अंदर भी अल्लाह की याद में होते हैं, हत्ता के वो कारोबार कर रहे हों। यानी वैसे तो यहाँ पे खरीदो फरोख की एक मिसाल दी गई, लेकिन उनका कोई भी बिजनेस हो, मसलन वो ऑफिस जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, है ना, वो काश्तकारी कर रहे हैं, कारोबार, यानी कोई भी उनका पेशा है, वो पढ़ा रहे हैं, वो ट्रेन चला रहे हैं, वो जहाज चला रहे हैं, वो जो है वो खाना पकाना उनकी जॉब है, जैसे किसी रेस्टोरेंट वगैरह में है, तो जहां कहीं भी हैं वो वहां पे नमाज को भूलते नहीं है, अगर इसके मानी आप नमाज के ले लें। और दूसरे इसके मानी ये हैं कि अल्लाह की याद उनके दिलों में इतनी मौजूद रहती है, अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की तस्बीह, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वो चंद रोजा जिंदगी के फायदों के तलबगार नहीं होते, उनकी नजरें आखिरत की जिंदगी पर जमी रहती हैं, वो अल्लाह के हुजूर की जवाबदेही का एहसास रखते हैं। ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, ऐसे लोग हैं जिन्हें तिजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से जो है वो गाफिल नहीं करती। वा इकामिस सलाती, और नमाज के कायम करने से, नमाज नहीं सिर्फ पढ़ते, नमाज को कायम करते हैं, चराग से चराग जलाते चले जाते हैं, दिए से दिया, घर में खुद नमाज पढ़ते हैं तो बच्चों की भी फिक्र होती है कि बच्चे उठे कि नहीं, अलार्म तो लगाया था, जरा देख तो लूं। वो ये नहीं कहते कि कमरे से बाहर नहीं निकलना, कहते चलो बेटा बहू का दरवाजा भी नॉक कर दें, बच्चों को भी उठाते हैं, है ना। और बाद बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वालदैन का दरवाजा नॉक करते हैं, मुत्तकियों की इमामत पर भी तो बाद लोगों के बच्चे होते हैं ना, तो ये बड़े नसीबों की बात है। तो बच्चे माँ बाप का दरवाजा खटखटाएं, या वालदैन बच्चों का दरवाजा खटखटाएं, या ये कि पड़ोसियों का दरवाजा बाज लोग खटखटाते हैं, बाज लोग नमाज के वक्त दूसरों के घर में बैल देते हैं फोन से कि उसको जगा दें, है ना, कि इतनी बैल होगी तो मतलब यह कि फलां शहरी के लिए उठा रहा है या नमाज के लिए उठा रहा है। तो ये वो लोग हैं, वा इकामिस सलाती वा इताइज ज़कात, और ज़कात अदा करना फर्ज कभी नहीं भूलते। सिर्फ आप देखें कि नमाज और ज़कात का यहाँ पे खास तौर पर जिक्र किया गया, और इसका दरअसल मतलब यह है कि ये दीन के बुनियादी फराइज की हैसियत से है, तो जो इनकी हिफाजत करेगा वो दर हकीकत पूरे दीन की हिफाजत करेगा। जिसने नमाज और ज़कात को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जो नमाज और ज़कात से गाफिल हो गए गोया कि वो दीन से गाफिल हो गए। और ये वो लोग होते हैं, यखाफून यौमन ततकल्लबु फीही अल-क़ुलूबु वल-अबसार, उस दिन से डरते रहते हैं। वो कौन सा दिन है, किस दिन से लोग डरते हैं, ततकल्लबु फीही अल-क़ुलूबु वल-अबसार, जिस दिन बहुत से दिल जो हैं वो उलट पलट जाएंगे, दिलों की हालत जो है, यानी ततकल्लबु फीही अल-क़ुलूब, दिल की सिफत यहां पर क्या बताएगी, ततकल्लब, ततकल्लबु, तो ये कयामत की हौलनाकी की तस्वीर है। इस दिन लोगों को किसी पल चैन नहीं आएगा, दिल उड़े जा रहे होंगे, दिल जो है उलट पलट हो जाएंगे, और वल अबसार, और आंखें जो हैं गोया के उनकी आंखें जो हैं वो पत्थर आ गई हैं, پتھر بن جانا. اب آپ دیکھیں کہ سورت نازیات میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ. دو سے دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی. یعنی آپ دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ بہت بڑا صدمہ ہو، بہت جب مشکل وقت ہوتا ہے تو آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، آنکھیں جو ہیں وہ نیلی ہو جاتی ہیں، اور آنکھوں کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ سکتے میں ہی آ گیا نا، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. بہت زیادہ غم کی حالت میں بھی ایسی کیفیت جو ہے وہ لوگوں پر طاری ہو جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ بھی تو پڑھا تھا نا کہ ان کی آنکھیں ایسی ہیں گویا کہ وہ نیلی آنکھیں ہیں، ہے نا، زرقا. کیا تھا؟ ہاں زرقا، کہ گویا کہ ان کی آنکھیں ہی جو ہے نا وہ نیلی ہو گئی ہیں. اور کہیں یہ بھی آتا ہے شاخصت ابصار الذین کفروا، ان کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے، ہے نا، ایسے دیکھیں گے قیامت کے دن کے دیدے ہی پھٹے کے پھٹے رہ گئے، اب ان کو جو ہے اور کوئی چیز جو ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہی نا. تو لوگوں وہ دن جو ہے وہ بڑا ہی سخت دن ہے، اور اس دن سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں کہ وہ دن جو ہے ان کو کسی چیز کا کوئی جو ہے وہ کیا ہوگا، ہوش نہیں ہوتا، اور غم کی کیفیت ایسی ہوتی ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو رجال ہیں، جو فی بیوتن، جو مساجد میں پائے جاتے ہیں، جو نیکی کے ہر وقت کرتے ہیں، یہ خافون یوما تتقلب فیہ القلوب، وہ اس دن سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں جس دن دل الٹنے الٹ جائیں گے. والابصار، اور دیدے پتھرا جائیں گے. اور آپ دیکھیں وہ یہ سارا کام جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی ان کو جزا دے. لِيَجْزِيَهُمْ، تاکہ اللہ ان کو بدلا دے. قیامت کے دن کا ڈر، وہ دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ مجھے کون گلے میں پھولوں کے ہار پہنا رہا ہے، کون شابش دے رہا ہے. جیسے ایک عورت حج پہ گئی تو کہنے لگی کہ ہم نے تو سنا تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ نور آ جاتا ہے جا کے، تو یہاں تو اور سب دھکے ہی دھکے لگ رہے ہیں. اور یہ کہ جی گلے میں ہار پہنائے جانا، حاجی جب آتے ہیں عمرہ اور حج کر کے تو گلے میں ہار پہنایا جانا، اعتکاف سے لوگ اٹھتے ہیں تو ہار پہنائے جانا، ہار کسی کا پہنانا، دعوتیں کرنا، تحفے دینا، اب تو یہ رسمیں بن کے رہ گئیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ گلوں میں ہار پہنائے جائیں اور رسموں کو ادا کیا جائے. اصل بات یہ ہے کہ بعض وہ کہتے ہیں لو جی فلاں حج پر گیا تھا، ہم نے تو دعوت کی تھی، اس نے تو ہماری دعوت ہی نہیں کی، ہم نے تو اس کو یہ تحفہ دیا تھا، اس نے تو ہمیں تحفہ ہی نہیں دیا. اور دنیا میں انسان جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں یہ سبق یاد دلاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آیتیں تو بار بار آتی ہیں، ضرورت کیا ہے اس کی تفسیر کی؟ اگر ایک دفعہ ایک آیت کی تفسیر کافی تھی تو اللہ اس کو بار بار کیوں بیان کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں بار بار بیان کرتا ہوں، ہے نا. وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے واقعات، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، قوموں کا عروج و زوال، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، شیطان کا آگ سے بنایا جانا اور انسان کا مٹی سے بنایا جانا، بار بار مثالیں کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ شاید کسی وقت دل کی کیفیت ایسی ہو کہ دل بدل جائے، شاید کوئی آیت، کوئی بات، کوئی مثال یا کہنے والے کا انداز ایسا ہو، وہی آیت ہوتی ہے جو آپ نے بار بار پڑھی ہوتی ہے، لیکن کبھی کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. تو یہ وہ لوگ کیسے لوگ ہیں؟ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، یہ وہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے. آسنا یہ نہیں کہ چھوٹے موٹے جو عمل کیے تھے، جو بہترین عمل کیے تھے. اور میں اکثر اس بات پہ جب ایسی آیتیں پڑھتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ میں بھی اپنا جائزہ لوں کہ میرا کون سا عمل ہے جس کو میں کہوں کہ اللہ کے لیے اور بہترین میرا عمل ہے نا. تو جب اپنے عملوں کا جائزہ لیتی ہوں تو ہر عمل میں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا طریقہ صحیح تھا کہ نہیں، پتہ نہیں نیت ٹھیک تھی کہ نہیں، اچھا عمل تو ٹھیک کیا تھا، پتہ نہیں پھر میں اس کی حفاظت کر سکی کہ نہ کر سکی. यानी अमल करके फिर उसकी सारी जिंदगी हिफाजत करना। मैं और आप सबर कर लेते हैं, जब किसी ने गाली दी, किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने बुरा भला कहा, धक्का नहीं देते, बुरा नहीं कहते, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाते उस वक्त, तो माफ कर देते हैं, यस्पाहू नहीं कर पाते, दिल से नहीं निकाल पाते, फिर एक वक्त आता है कि उसको जता देते हैं। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्कत से अच्छा काम करते हैं, लेकिन दूसरे बाज़ूकात ऐसा लगता है शायद उसने मुझे इतना तंग कर दिया कि बस, फिर कह दिया, भरे हुए तो सारा कुछ खोल के रख दिया। बड़ा अफसोस होता है, कितने साल इतनी जिंदगी जब सबर किया था, अब मैंने क्यों ना सबर किया ना। तो आइए अपना अपना मुहासबा करें और जायजा लें, मेरे कौन से अमल ऐसे हैं जो मैंने खास अल्लाह के लिए किए हैं। आसन आसन मा अमिलू, तो अपने अमलों की, उन अमलों की लिस्ट बनाएं जो खास आपने अल्लाह के लिए किया, किसी और के लिए नहीं किया। और वो जो खास अमल है जो बड़ी मुश्किल से किया है, अल्लाह के लिए किया है, दुनिया से बदला नहीं लेना, लियज़ियहुमुल्लाहु, वो अल्लाह उस दिन से इसलिए डरते हैं ताकि अल्लाह उनके बेहतरीन अमल का उनको बदला दे, जजा दे। और आप देखें कि अगर बेहतरीन अमल है उसमें नीयत अच्छी नहीं है तो फिर सजा मिलेगी। बेहतरीन अमल है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, लेकिन जाहरी तौर पर नुमाइश ही नहीं किया है, तो फिर जजा, ये जो जजा का मतलब क्या है, सजा भी मिल सकती है, जजा भी मिल सकती है, बदला दोनों तरह का मिल सकता है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि यहाँ पे इनके बेहतरीन अमाल की उनको जजा दे, व यजीद मिन फजले, और मजीद अपने फजल से नवाजता है। लोगो, अल्लाह तो अरहमुर रहीमीन है, वो तो सबसे बढ़कर देने वाला है। तो मैं आप अक्सर अपने दिले नादा को ये बात समझाया करती हूँ कि मैं इंसानों से नेकी का बदला क्यों चाहती हूँ, अगर वो मुझे कुछ कह देते हैं तो मैं अफसरदा क्यों होती हूँ, इसलिए कि वो बेचारों को समझ नहीं है ना, है ना। तो एक यानी एक बेहतरीन मुसलमान बनने के लिए अपने दिल को बार बार समझाने की जरूरत है, क्योंकि दिल की हालत बदलती रहती है ना, कभी अफसोस हो जाता है किसी के रवैये पर, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह से गलती होगी निस्ता बिन उसासा, है ना, कि तर्ज अमल पर। तो ऐसे मौकों पर यह समझाने की जरूरत है कि मेरा रब तो मुझे मेरी नेकी का बदला सिर्फ उतना ही नहीं जितना मैंने किया, मुझे तो उससे कई दर्जे बढ़कर देगा, तो मैं अपने जैसे इंसानों से अपनी नेकी का बदला क्यों देती हूँ। बाज औरतें अपने शौहरों से बड़ी नाला रहती हैं कि मेरे शौहर ने मेरी कदर ना की, बाज माएं अपने बच्चों से बड़ी नाला रहती हैं, सारी जिंदगी खिदमत की और मेरे बच्चों ने मुझे मेरी वो खिदमत ना की, मैं तो उसको दूध माफ नहीं करूंगी, मैंने तो उसको जायदाद में से आग कर दिया। बाज शोहर, बाज बीवियां, बाज वालदेन अपने बच्चों से बड़े नाला, बाज लोग दोस्तों से बड़े नाला रहते हैं, मैंने सारी जिंदगी दोस्तों के लिए खपा दी और मेरे दोस्तों ने मुझे कुछ दिया ही ना, है ना। बाज बहुओं से, बाज दामादों से, बाज हमसायों से, तो असल बात यह है उस रब से मांगो जो 70 माओं से बढ़कर देने वाला है, जो 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है, जो इतना देता है जो मेरे और आपके तसव्वुर में भी नहीं, जो हमारे अमलों का बदला सिर्फ नहीं देगा, वह यज़ीदुहुम मिन फ़ज़ले, जो अपने फजल से ज्यादा देगा। ये अल्लाह किन लोगों को देगा, जिनके दिल जो है ईमान के नूर से कौकबुन दुरी हैं, नूरुन अला नूर हैं, मसाजिद के अंदर पाए जाते हैं, जिक्र अस्कार लड़ाई झगड़े नहीं, घर मस्जिदें हैं, सुबह शाम बिल गुदुए वल आसाल, सिर्फ गुदुए आसाल नहीं सुबह शाम बल्कि हर वक्त, और वो जिंदगी में दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो, कोई तिजारत, कोई भी बिजनेस, औरत है तो प्रेग्नेंट है, उसकी प्रेगनेंसी उसको अल्लाह की इबादत से रोकती नहीं है, है ना। अगर औरत है तो खाना पका रही है, उसके चावलों बिरयानी को दम दे रही है, नमाजें तो गानी करती है कि चावलों को दम आ रहा है, रस मलाई बना रही है कि गुठली ना उसमें बन जाए, उसमें वो नमाजें कजा नहीं कर देती, वो गुस्से में नहीं आ जाती, यानी कुछ भी यहाँ पे तिजारत और बै की मिसाल देकर कोई शख्स जो भी काम कर रहा है, जवान है, बूढ़ा है, बीमार है, सेहतमंद है, घर के अंदर है, घर के बाहर है, वो जो तालीम हासिल कर रहा है, तालबिल में बाल तालबिल कहते हैं जी रोजा ना रखें, बाल तिजारत करने वाले कहते हैं जी रोजा ना रखें, कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह को भूलते नहीं है, नमाज जकात हर हाल में अदा करते हैं, गोया के पूरे दिन की हिफाजत करते हैं, और सारे काम जब करते हैं तो दुनिया के नहीं नहीं आखरत से डरते रहते हैं, कयामत का उनको बड़ा खौफ रहता है, वो दिन बड़ा ही सख्त दिन होगा, ऐसा दिन जो बड़ा ही लंबा दिन होगा। सूरत दहर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दिन की जो तस्वीर खींची है वो इतनी सख्त है, वो इतनी होलनाक है, वो इतनी दिलों को दहला देने वाली है कि अगर आप पढ़ें तो आपको इस बात की समझ आए कि ये वो जो नेक और मुत्तकी लोग होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि वो जो लंबा दिन है, जो डरने वाला दिन है, उससे वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। यानी वो इस दिन का खौफ करते हैं जो तंगी वाला और सख्ती वाला और लंबा दिन होगा, वो उससे डरते रहते हैं। यूफून बिन नजरी व यखाफून यौमन कान शर्रहू मुस्ततीरा, जिसका शर बड़ा ही तवील होगा। तो यहाँ पे भी यही कहा कि वो आखिरत की फिक्र करते हैं, वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, और अल्लाह रिज़्क़ अता करता है जिसको चाहता है, बेहिसाब देता है। तो अब यहाँ पर सिफात बताई गई कि अल्लाह का नूर, जो अल्लाह के नूर से जो फैज याब होते हैं उनकी ये सिफात हैं। अल्लाह किनको हदायत देता है जिनके अंदर ये सिफात पाई जाती हैं? अल्लाह का नूर हदायत कोई अंधी बाण थोड़ी है जिसे चाह दे दिया, जिसे चाह धतकार दिया, है ना। तो जिस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत होती है, अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह की जजा की तलब होती है, अल्लाह के गजब से बचने की ख्वाहिश होती है, जो दुनिया परस्ती में गुम नहीं है, जो अपनी सारी मसरूफियात के बावजूद अल्लाह को याद करता है, जो पस्तियों में पड़ा नहीं रहता, जो बुलंदियों में जाने की अमलन कोशिश करता है, जो हर हाल में अल्लाह को पुकारता है, जो चंद रोजा दुनिया का तलबगार नहीं होता बल्कि आखिरत की अबदी जिंदगी पर जिसकी निगाह जमी हुई होती है, तो अल्लाह ताला अपना नूर उसको अता करता है। जब अल्लाह उसको देने पर आता है तो इतना देता है कि फिर इंसान का अपना दामन तो तंग हो जाता है लेकिन अल्लाह के देने का दामन जो है वो तंग नहीं होता। वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब जो है वो अता करता है।